मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 9 अगस्त 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अक्षिता कौशिक रुड़की उत्तराखंड से और शिमंत सिंह सूरत गुजरात से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे ट्रेड वार न कहें बल्कि कह लीजिए आर्थिक मंदी के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ सूचनाएं दे दूं जो हर शुक्रवार को मैं आप लोगों को दिया करता हूं। इस बार फ्रेंड्स 3 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। आपको मालूम है कि सोमवार को भी गजटेड हॉलीडे है और हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हॉलीडेज हैं उनको फॉलो करते हैं। मंगलवार को फिर एज इट इज जैसी चीजें मिलती हैं आपको उसी तरह से अवेलेबल कराई जाएंगी। हाँ, प्रेस क्लिपिंग्स आपको शनिवार को कल मिलेंगी, इतवार को नहीं मिलती हैं आप जानते हैं, और फिर सोमवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स भी मिलेंगी। योजना और कुरुक्षेत्र के आपको हिंदी और इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ने को दिए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। एक वीकली क्वेश्चन आप सबको प्रोवाइड किया जाता है मेन्स के प्रैक्टिस के लिए। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत से मेल मुझे ऐसे आते हैं कि सर मैं एक सप्ताह से तैयारी कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन लिखने की कोशिश की और इस टॉपिक पर मैंने पढ़ाई भी की थी लेकिन मैं उत्तर नहीं लिख पाया। उत्तर लिखने के लिए आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिविल सर्विस के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर बड़े डिफरेंट तरीके के होते हैं। देखिए, स्ट्रेट क्वेश्चन तो होते नहीं है, आपने महसूस किया होगा। तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तरों के लिए आपको ढेर सारी दूसरे क्षेत्रों की भी जानकारी होनी चाहिए और इससे आपके दिमाग में मैच्योरिटी आती है, तभी आप उनके उत्तर लिख सकेंगे। तो बेहतर होगा कि जो भी इसकी कोशिश कर रहे हैं वो तब करें जब एक बार उन्होंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया हो। मैं अभी केवल पढ़ने की बात कर रहा हूं, सेकेंड स्टेज तो तैयार करने की बात होती है कि आपकी अच्छे से तैयारी हो गई हो, लेकिन यदि आप एक बार पूरा सिलेबस यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या जिसका मैंने क्वेश्चन दिया है उसी से रिलेटेड आप पढ़ें और आप मान ले कि नहीं आप इसके लिए तैयार हो गए हैं, जब आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तब फिर आप उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर जो इसको लेकर के चिंता है उससे काफी कुछ आप मुक्त हो जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। तो आइए आज हम पहले दूसरी घटनाओं पर बात कर लेते हैं। कल आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, दूरदर्शन चैनल पर भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन रहा है राष्ट्र के नाम उसको भी आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा। और दोस्तों यदि नहीं सुना हो तो आप ये आदत बना लीजिए कि आप सुना करें, खासकर तब जबकि प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हों। देखिए प्रधानमंत्री बीच बीच में इस तरह की स्थितियां जब विशेष स्थितियां आती हैं तभी संबोधित करते हैं, अदरवाइज फिर 15 अगस्त को तो वो राष्ट्र को संबोधित करते ही करते हैं और बकायदे आपको उसे भी सुनना चाहिए क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है ना। आप इस तरह से मत छोड़ दीजिए कि अरे ठीक है ये तो किसी नेता के द्वारा दिया गया भाषण है या ये तो कहा ही जाता रहा है और होता ही रहता है। नो, नागरिक के रूप में आप चाहे जो भी सोचें वो आपका अधिकार है, लेकिन सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपको इस एंगल से नहीं सोचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के नाते वो जो भी बात कह रहे हैं उसका अपना एक वजन है, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, राइट। अब कल देखिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पर जो भी संबोधित किया क्यों किया, पहला प्रश्न यही है कि क्यों किया। अभी अखबारों में चीजें आ रही हैं, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, पूरे देश को पता लग गया है 370 हटाया जा चुका है, 35A हटाया जा चुका है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख कब को बना दिया गया, ये सब सबको मालूम है। तो प्रधानमंत्री जी को कहने की क्या जरूरत है, इसी के आपको अर्थ को समझना होगा, उनके वजन को समझना होगा कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं तो आप ये मान करके कि देश का जो मुखिया है वो देश से बात कर रहा है, ठीक है। और बात जो उन्होंने की है, देखिए कुछ एप्रिहेंशंस होते हैं इन चीजों को लेकर के, उन्होंने उस एप्रिहेंशन को दूर करने की कोशिश की कि आपके मन में अगर कुछ आशंकाएं हैं और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में तो बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। वैसे कोई दूसरा भी कहता समझाता आर्टिकल लिखता रहता तो बात अलग है, लेकिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो बहुत वजन रखता है। उन्होंने उनके मन की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की, बकायदे शोर किया कि देखिए ये थोड़े समय की ही व्यवस्था है, बाद में आपके ही अपने जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच से ही आएंगे और वो शासन करेंगे। और बकायदे उन्होंने बताया कि किस तरीके से 370 के लगने से जो जम्मू कश्मीर है उसको नुकसान उठाना पड़ा है, और अब जबकि हटा दिया गया है तो किस तरीके से उसे लाभ मिलेगा, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो जम्मू कश्मीर है इसमें वैश्विक पर्यटन क्षेत्र बनने की ताकत है, और पर्यटन और नो डाउट तो सही भी है। सोचिए कि उन्होंने आह्वान किया है राष्ट्रीय मंच पर फिल्म इंडस्ट्री से कि वो आए, पहले तो फिल्म शूटिंग हुआ करती थी, तो एक बार अगर वहां इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई, और एक्टिविटीज तभी शुरू होगी जब आतंकवादी गतिविधियां खत्म होंगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, तो पर्यटन भी शुरू होगा और दूसरी गतिविधियां भी शुरू होंगी। तो एश्योर किया है उन्होंने कि यह आपके अपने हित के लिए ही किया गया है। तो जब प्रधानमंत्री को आप सीधे सुनते हैं तो आपके मन में एक बहुत तसल्ली पैदा होती है। तो मित्रों, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी प्रधानमंत्री जी इस तरह से बात करें, आपको जरूर सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इस तरह से आप सुनिए मानो कि आपकी जनरल स्टडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लग रही है, ठीक। दूसरी खबर जो छोटी सी है कि भारत रत्न कल जो दिया गया है, आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी जी को, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, भूपेन हजारिका जी जो बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, और नानाजी देशमुख, इनको कल सम्मानित किया गया है, और दो को मरणोपरांत है, और प्रणब मुखर्जी जी तो अभी हमारे बीच है, हमारे सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आज के करेंट कंटेंट के तहत एक आर्टिकल डाला गया है, ब्लॉकचेन कानून पक्ष और विपक्ष, ये हिंदू में छपा था। ब्लॉकचेन अभी बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, अब ये सोचा जा रहा है कि इसके पक्ष में भी ये मतलब इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कुछ देशों ने बनाए हैं, कुछ देश बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये खासकर ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा नहीं, तो ये आर्टिकल मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी है और आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, अब मैं आता हूं आर्थिक मंदी पर। देखिए, ये आर्थिक मंदी क्या है, इसे मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको मालूम है कि दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए, हम भी उनमें से एक थे। जो देश आजाद हुए वो तो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, क्योंकि उन देशों में उपनिवेशवादी शासन थे, कहीं फ्रांस शासन कर रहा है, हमारे यहां ब्रिटेन शासन कर रहा था, कहीं स्पेन कर रहा है, ये सब देश उन देशों पर शासन कर रहे थे। इसी बीच में आपको मालूम है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था 1750 के आसपास। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ये यूरोप में तो हो गया लेकिन इन देशों में उन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि फिर इनका सामान कौन खरीदता। तो नतीजा ये हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार में ये आजाद हुए तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी, राइट। तो जिसकी आर्थिक स्थिति या कह लीजिए अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई होगी, वह हमेशा अपने उद्योगों के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए संरक्षणवादी नीति अपनाएगा, क्योंकि हमारे पास भारत के संदर्भ में हम बात करें तो उत्पादन के उतने हाई टेक्नोलॉजी वाले साधन नहीं है, जबकि दूसरे देशों के पास है, यूरोपियन देशों के साथ पास, तो वो तो कोई भी चीज बड़े सस्ते में हमारे बाजार में ला करके पटक सकते थे और हमारे अपने उद्योगों को पनपने से रोक सकते थे। तो संरक्षणवादी नीति पूरी दुनिया ने अपनाई और ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन महसूस किया जाने लगा कि नहीं, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। और 1980 के आसपास से ही फिर ये बात कही जाने लगी कि नहीं नहीं, मुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो संरक्षणवादी है ये गड़बड़ कर रही है, ठीक है। चलिए, 1990 तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर देशों ने फिर अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया, जिसमें हम भी हैं, 1991 में हमने भी ओपन कर दिया। तो चलिए 1991 को लें तो आप मोर और लेस मान लीजिए कि लगभग 30 साल हो गए। तो अब क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में एक विचित्र किस्म का आक्रोश पैदा हो गया है, आक्रोश इस बात को लेकर के कि हमारी अपनी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। और इसकी शुरुआत सोचिए कि चीन जैसा देश कर रहा है, जो जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका। अब आप देखिए कि अमेरिका और चीन में फिर विवाद शुरू हुआ, ये आप जानते हैं, लगातार आप अखबारों में पढ़ भी रहे हैं। जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, ये जो व्यापार ट्रेड वार है ना, ये ट्रेड वार अच्छी चीज है, व्यापार युद्ध अच्छी चीज है। अब अच्छी चीज है। तो ठीक है, उसने चीन के विरुद्ध लगाना शुरू किया, चीन ने उसके खिलाफ लगाना शुरू किया और इस तरह से ट्रेड वार की स्थिति बन गई। अब ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेड वार के कारण और पिछले कुछ दूसरी स्थितियों के कारण एक बार फिर से अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में पहुंचने वाली है, जैसा कि 2008 में ये पहुंची थी। अब आप ये देखिए कि ये जो मंदी का दौर है ये क्या है, बहुत ही मैं आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, आदमी के शरीर में सुस्ती आ गई, आदमी सुस्त पड़ गया, यानी कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई। अर्थव्यवस्था की एनर्जी क्या है? अर्थव्यवस्था की एनर्जी है, देखिए, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वस्तुएं पैदा की जा रही हैं, इसके बाद उन वस्तुओं को लोग खरीद रहे हैं। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो जो वस्तुएं उत्पादन की जा रही हैं उनका क्या होगा? डंप हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो यानी आप खरीद रहे हैं, आप वस्तुएं खरीद रहे हैं तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं, और जब आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो फिर आप वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं कि भैया अब खत्म हो गया तो अब मुझे फिर दीजिए। इस तरीके से आप मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहे हैं, और जब आप मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है। तो जब ज्यादा वस्तुओं की मांग हो रही है तो अब इस मांग को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि आप नए नए और उद्योग लगाएंगे कि भैया हम एक एक कोई उद्योग तो पूरा कर नहीं पाएगा, तो नए नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। जब नए नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उसमें नए नए लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा। तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उस पैसे का करेंगे क्या? चीजें खरीदेंगे, राइट? तो जब चीजें खरीदेंगे इसका मतलब क्या हुआ अर्थशास्त्र की भाषा में? कि फिर से बाजार में डिमांड जनरेट हो रही है। खरीद रहे हैं ना आप, डिमांड जनरेट हो रही है, और जब डिमांड जनरेट हो रही तो फिर से आप उद्योग लगा रहे हैं। तो ये जो है, मैंने आपको जो अर्थव्यवस्था की मंदी या सुस्ती है उसके विरोध में बताया है, और जानबूझकर विरोध में बताया है, क्योंकि मंदी के बारे में तो आपको पढ़ने को मिलेगा। अब आप इसको एकदम से उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। किसी वजह से मांग कम हो गई, उसके बहुत सी वजह हो सकती हैं। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखिए तो हम देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे कैसे चीजों की मांग कम होती जा रही है। ऑटो सेक्टर के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि ऑटो सेक्टर में डिमांड कम होने से पता लगा कि लगभग 300 शोरूम बंद हो गए और उसमें 32,000 लोग जो है बेरोजगार हो गए, कहीं आंकड़ा 50,000 मिलता है। जेट एयरवेज आपके सामने मालूम है कि बंद हो गया है, दीवान हाउसिंग बंद हो गई है, बंद नहीं हो गई है मतलब संकट में, यस बैंक संकट में है, कॉक्स एंड किंग्स जो इतना बड़ा पर्यटन का कंपनी है वो संकट में फंसी हुई है। तो जब ये सब संकट में फंसेंगे तो यहां काम करने वाले लोगों की पहले तो छटनी होगी, इसके बाद कंपनी बंद भी हो सकती है। तो स्वाभाविक है कि जब लोगों के पास काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो वो क्या खरीदेंगे? खरीदने के उनके पास पैसा नहीं है। जब खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो फिर इन उद्योगों का क्या होगा? दुर्भाग्य से फिर से पूरी दुनिया में इसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं, यानी कि ये केवल भारत में ही है, अमेरिका में दिखाई देने लगा है, चीन में दिखाई देने लगा है, जर्मनी में दिखाई देने लगा है, इटली में दिखाई देने लगा है, दूसरे देशों में भी इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं, जिसे अर्थशास्त्री समझ रहे हैं। तो उन्होंने सतर्क किया है कि इसके प्रति अगर अभी से सही कदम नहीं उठाए गए, डिमांड जनरेट नहीं की गई, तो मुश्किल आ जाएगी। आपको मालूम होगा कि बजट में जो हमारे यहां 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, उसको हासिल करने के लिए अपन ने क्या बात की थी, मतलब ये सरकार के द्वारा ही दिया गया स्टेटमेंट है कि निवेश चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? क्या करेंगे आप? उद्योग लगाएंगे, और उससे फिर अर्थव्यवस्था में जान आएगी। तो दोस्तों, खासकर जो मंदी का टॉपिक है, मुझे लगता है कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, जब भी इस पर आप लोगों को कुछ पढ़ने को मिले तो प्लीज थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आज क्लिपिंग्स केवल एक ही है। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: जितेंद्र गरोदा, आशीष श्रीवास्तव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अमित साहू, शम्स तबरेज और रवि कुमार जैसवार मुंबई से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इस बार तीन दिनों के लिए आप सब मुझे अनुमति दें। मालूम है आपको कि मंडे को गजेटेड हॉलीडे है, तीन दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम लोग बातें करेंगे। ये जो तीन दिन हैं आपके बड़े खुशनुमा सिद्ध हो, इसके लिए पूरी एकेडमी की टीम की ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।